चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते सारी राह चलते चलते।
आवाज की दुनिया के दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केड़ो हाल आहे। मैं संगीता पमनानी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। जी हाँ, थोड़ा लंबा इंतज़ार हो गया इस बार, क्षमा चाहूँगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने मेरी एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है बीवी का चश्मा। उम्मीद है ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी दो भागों में होगी, आज प्रस्तुत करती हूँ इसका पहला भाग। बीवी का चश्मा। बड़ा सुहावना मौसम था, अभी अभी बारिश होकर हटी थी और वातावरण में बहुत ही सुखद सी ठंडक फैली हुई थी। चांदनी चौक में स्थित डॉक्टर वर्मा का क्लिनिक बंद हो चुका था। आखिरी रोगी को गए लगभग 15 मिनट से ऊपर हो चुके थे। डॉक्टर वर्मा अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, उनके सामने उनकी खूबसूरत सजी धजी रिसेप्शनिस्ट किरण बैठी हुई थी। डॉक्टर वर्मा मन ही मन उसकी तुलना अपनी बीवी, अपने 3 बच्चों की माँ शांता से कर रहे थे। किरण अगर हरी मिर्च जैसी तीखी थी तो शांता आलुओं के बोरी जैसी फुसफुस। हे भगवान, उसके जमाने में महिलाओं में ऐसे सज धज, ऐसा रख रखाव, ऐसा आकर्षण क्यों नहीं होता था। उसके जमाने में महिलाओं की यह कोशिश होती थी कि उसके जिस्म का कोई भी अंग किसी मर्द को दिखाई न दे जाए, कोई उभार उभार न लगे। तो आज की लड़कियां मर्यादा और शालीनता की हद में रहकर जितना जिस्म दिखाया जा सकता है दिखाती हैं। मर्द की तारीफी निगाह अपने शारीरिक सौंदर्य पर पड़ती जानकर सकुचाती शर्माती नहीं है बल्कि खुश होती हैं। यह किरण है जो कैसा अच्छा फैंसी ब्लाउज पहनकर आती है। डॉक्टर वर्मा ऐसे ललचाई आंखों से उसे देख रहे थे जैसे कि बस उनकी लार ही टपकने वाली थी। तभी मेज के नीचे उसके घुटने किरण के घुटने से टकराए। डॉक्टर वर्मा के सारे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। किरण ने बनावटी मासूमियत से सिर उठाकर डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ने खंखार कर गला साफ किया और बोले, एक बात बताओ किरण। पूछिए, किरण इठलाकर बोली, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है?
नहीं।
तुम कभी किसी लड़के के साथ घूमी फिरी नहीं हो?
थोड़ा बहुत,
वो शर्माने का अभिनय करती हुई बोली,
कभी एक आध बार पिक्चर विक्चर ही देख ली।
अच्छा, बस और कुछ नहीं?
नहीं।
अच्छा, डॉक्टर ने बोला। उस रात डाइनिंग टेबल पर जब डॉक्टर का अपनी पत्नी शांता से आमना सामना हुआ तो उनका मन वितृष्णा से भर गया। कितनी बदसूरत बदमजा औरत थी शांता। 3 बच्चे पैदा कर चुकने के बाद इतनी बेडोल हो चुकी थी कि छाती कमर सबका नाप एक हो गया था। चलती थी तो जैसे ड्रम लुढ़कता हुआ सा मालूम होता था। बाल पकने लगे थे और आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि वह -10 का चश्मा लगाती थी। चश्मे के बिना एक कदम भी चलने पर वो ठोकर खा जाती थी। किरण और उसका क्या मुकाबला था? किरण अगर 56 व्यंजनों से सजी थाली थी तो शांता पिछले हफ्ते के खाने जैसी बासी और बदमजा। उस रोज डॉक्टर ठीक से खाना भी न खा सका। पत्नी की शिकायत भरी निगाहों की परवाह किए बिना वो बीच में ही उड़ गया। अगले दिन क्लिनिक बंद होने के समय से पहले डॉक्टर ने अपने मन की बात किरण को बता दी। किरण, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। किरण हैरानी से डॉक्टर का मुंह देखने लगी। उसके चेहरे पर हैरानी थी, पता नहीं कि असलियत थी या बनावटी, लेकिन थी।
मैं आपका मतलब नहीं समझी, वो पलकें झपकाती हुई बोली।
इतनी नादान मत बनो किरण, डॉक्टर कातर स्वर में बोला। मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ और तब से गिरफ्तार हूँ जब से तुमने पहली बार मेरे क्लिनिक में कदम रखा था।
लेकिन आप तो विवाहित हैं, बाल बच्चेदार है?
जानता हूं, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं फिर भी तुमसे मोहब्बत करता हूं किरण।
लेकिन किरण अटकी। किरण, क्या विवाहित आदमी के सीने में दिल नहीं होता?
वो तो ठीक है, लेकिन ये रिश्ता कैसे संभव है?
तुम चाहो तो सब कुछ संभव हो सकता है।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, किरण ने बोला।
अच्छा अभी कुछ मत कहो, अभी घर जाओ, जो मैंने कहा है उस पर अच्छी तरह सोच विचार कर लो, हम इस बारे में कल फिर बात करेंगे।
किरण चली गई। अगले दिन वो आई ही नहीं। डॉक्टर का दिल डूबने लगा। लड़की खफा हो गई मालूम होती है, और अब शायद वो उसकी सूरत से भी बेजार थी। डॉक्टर निराश सा हो गया।
लेकिन उसके अगले दिन किरण आई और डॉक्टर की जान में जान आ गई। दिन भर दोनों रोगियों में व्यस्त रहे। फिर क्लिनिक खाली हो जाने के बाद और आज क्लिनिक का दरवाजा भीतर से बंद कर लेने का एक नया काम करने के बाद दोनों का आमना सामना हुआ। डॉक्टर के हाथ अपने आप ही उसकी तरफ फैल गए और किरण यंत्र चलित सी उसकी बाहों में आ गई। डॉक्टर को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसने अंगारा छू लिया हो। उसने आंखें बंद कर ली। किरण ने कोई एतराज नहीं किया, शायद उसका इकरार का यही तरीका था। डॉक्टर ने और आगे बढ़ने की कोशिश की तो किरण ने उसे जबरदस्ती परे धकेल दिया। बस वो बोली, इससे आगे नहीं। हांफता हुआ डॉक्टर लालसा भरी आंखों से उसे देखता रहा। कुछ क्षण बाद वो अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू कर पाया तो बोला, किरण मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मुझे पाने के लिए आपको मुझसे शादी करनी होगी, किरण दृढ़ स्वर में बोली। लेकिन ये असंभव है, डॉक्टर असहाय भाव से बोला, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं ना। आप अपनी पत्नी से तलाक ले लीजिए, किरण बोली। पर तलाक की कोई वजह ही नहीं है, ये हिंदुस्तान है यूरोप नहीं, यहां बिना किसी ठोस वजह से तलाक नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं जानती, अगर आप मुझे हासिल करना चाहते हैं तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं आपकी रखेल नहीं बन सकती, मैं किसी नाजायज औलाद की मां नहीं बन सकती, किरण ने दो टुक जवाब दे दिया। डॉक्टर गैस निकले गुब्बारे की तरफ पिचक गया। लेकिन किरण के उस दो टुक जवाब से उसके इश्क का बुखार उतरा नहीं और भड़क उठा। किरण की उफनती जवानी की आंच में एक बार थोड़ा जल चुकने के बाद वो अपना सर्वस्व होम कर देने पर आमादा था। अधीरावस्था का इश्क खतरनाक होता है। किरण की आशिकी में सुलगते डॉक्टर ने अपने 15 साल के सुखी गृहस्थ जीवन में आग लगाने की ठान ली। इश्क का भूत दीवानगी की इस हद तक पहुंच गया कि डॉक्टर वर्मा ने एक निहायत जुनूनी कदम उठाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी बीवी का कत्ल करने का फैसला कर लिया। अब वो कत्ल की योजनाएं बनाने लगा। पत्नी की हत्या का पहला प्रयत्न उसने कुकिंग गैस द्वारा किया। किसी रात अगर डॉक्टर वर्मा देर तक पड़ता रहता था तो शांता उसके पास से उठकर बैठक में जा सोती थी। उनकी बैठक ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम दोनों का काम करती थी। वो एक विशाल कमरा था जिसके आधे भाग में एक दीवान और एक सोफा सेट लगा हुआ था और बाकी आधे में डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। उस कमरे और बगल में मौजूद किचन में 2x2 फुट की एक खिड़की थी जिसमें से किचन के सीधे डाइनिंग टेबल तक सामान पहुंचाया जा सकता था। शांता आदतन एक भुलक्कड़ औरत थी। कितनी ही बार ऐसा होता था कि वो चूल्हे को बुझा देती थी लेकिन सिलेंडर से गैस बंद करना भूल जाती थी। उसकी ये लापरवाही की आदत जग विदित थी और अड़ोस पड़ोस की गृहणियां कई बार कह चुकी थी कि शांता की वो आदत किसी दिन जरूर कोई गुल खिलाएगी। शांता हर बार पूरा ध्यान करने की कसम खाती थी लेकिन फिर भूल जाती थी। डॉक्टर ने किरण की इस भूल को उसकी मौत का सामान बनाना चाहा। फिर एक रात डॉक्टर जानबूझकर बत्ती जलाए काफी देर तक पढ़ता रहा। हमेशा की तरह शांता उठकर बैठक में चली गई। बच्चे बगल के कमरे में पहले ही सोए पड़े थे। उस रोज ठंड ज्यादा थी इसलिए घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे और उन पर पर्दे लगे हुए थे। डॉक्टर प्रतीक्षा करने लगा। अब उसे शांता के धीरे धीरे खर्राटे भरने की आवाज सुनाई देने लगी। शांता हमेशा ही मुर्दों से शर्त लगाकर सोती थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर दबे पांव उठा, वो बैठक में आ गया। शांता दीन दुनिया से बेखबर दीवान पर पड़ी सो रही थी। वो किचन में पहुंचा। उसने गैस पूरी खोल दी। किचन और बैठक के बीच की खिड़की पहले ही खुली थी और किचन की खिड़की बंद थी। वो किचन से बाहर निकला। उसने दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। अब किचन में जमा होती गैस खिड़की से निकल कर केवल बैठक में ही जा सकती थी। वो वापस अपने बेडरूम में आ गया। उसने बीच का दरवाजा बंद कर लिया और दिल पर हाथ रखे प्रतीक्षा करने लगा। कोई आधे घंटे बाद उसे शांता के धीरे धीरे खांसने की आवाज सुनाई दी। गैस अपना काम कर रही थी। डॉक्टर को उम्मीद थी कि अभी गैस की वजह से शांता पर बेहोशी तारी हो जाएगी और फिर नींद में ही उसका काम तमाम। डैडी, वो चौंका। आवाज विपरीत दिशा से आ रही थी। उसने घूमकर देखा, दाई ओर के दरवाजे की चौखट पर उसका 10 वर्षीय बड़ा लड़का आंखें मलता हुआ खड़ा था।
डैडी,
वो बोला,
मुझे गैस की बू आ रही है।
मजबूरन डॉक्टर को उठना पड़ा। उसने बत्ती जलाई, आंखें मलकर नींद भगाने का बहाना किया। एक दो बार हवा में नथुने फड़फड़ाए और फिर सशंक स्वर में बोला, हे भगवान, बेटा लगता है तुम्हारी माँ आज फिर गैस बंद करना भूल गई। वो बीच के दरवाजे की ओर लपका। उसके दरवाजा खोल पाने से पहले ही दरवाजा दूसरी ओर से खुला और खांसी लड़खड़ाती शांता भीतर दाखिल हुई। उसकी आंखें बंद थी और वो अंदाजे से टटोल टटोल कर चल रही थी। डॉक्टर ने उसे सहारा देकर बेडरूम के पलंग पर लिटाया और किचन की ओर लपका। उसने गैस बंद की और बैठक में जाकर उसने खिड़कियां खोल दी। उसके बेडरूम में लौटने तक शांता सचेत हो चुकी थी। हाय राम, वो बोली, मैं भी कैसी लापरवाह हूं, आज फिर से मेरे से गैस खुली रह गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, मन ही मन हालात को कोसते हुए डॉक्टर ने सवाल किया। ठीक है, शांता ने चैन की लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया। उस रोज डॉक्टर मायूस तो हुआ लेकिन हतोत्साहित न हुआ। उसे एक बात का अफसोस था कि अब वो शांता की हत्या का दूसरा प्रयत्न तुरंत नहीं कर सकता था, इससे लोगों को शक हो सकता था। अगले दिन शांता ने बड़ी नाटकीय ढंग से अड़ोस पड़ोस में यह बात चलाई थी कि किस प्रकार पिछली रात को अपनी लापरवाही की वजह से मरते मरते बची थी। किरण की फिराक में तड़पता अंगारों पर लौटता डॉक्टर वर्मा किसी और मुनासिब मौके का इंतजार करने लगा। किरण का अथाह सौंदर्य व छलकती जवानी उसे बेकाबू किए हुए थी। वो अपने सामने व्यंजनों से युक्त थाली को निहार कर लार टपका सकता था पर उसका स्वाद नहीं चख सकता था। बीच में उसकी दीवार बनी पत्नी जो खड़ी थी। उस घटना के 2 महीने बाद दूसरा मौका डॉक्टर के हाथ लगा। शांता बीमार पड़ गई। डॉक्टर वर्मा सिद्धांत के तौर पर अपने परिवार के सदस्यों का इलाज स्वयं नहीं करता था, वैसे भी घर का जोगी जोगड़ा ही समझा जाता है। उसने अपने दोस्त डॉक्टर घोष को बुलाया। वो शांता को दवाई और आराम करने की हिदायत देकर चला गया। उसने डॉक्टर घोष को कहते सुना कि जो दवा वो शांता को दे रहा था उसको बहुत सावधानी से खाना जरूरी था, क्योंकि उसकी खुराक बढ़ जाना जान के लिए खतरा बन सकता था। डॉक्टर वर्मा ने वो बात अच्छी तरह से याद कर ली। अगली सुबह जब बच्चे स्कूल गए तो उसने अपने बेडरूम की अलमारी से मॉर्फिन की गोलियों की एक शीशी निकाली। डॉक्टर होने के नाते वो जानता था कि वह गोली एक खाई जानी चाहिए, 2 तक खाई जा सकती थी, लेकिन पहले से बीमार आदमी द्वारा 4 गोलियां खाए जाने का परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता था। फिर भी अपनी भरपूर तसल्ली कर लेने के लिए उसने शीशी से 8 गोलियां निकाल ली। उसने वो गोलियां आधा ग्लास दूध में घोली और दूध लेकर बीवी के सिरहाने पहुंच गया। ये लो दूध, वह बोला, तुम्हारा दवा खाने का वक्त हो गया है, दवा खा लो और ऊपर से दूध पी लो। शांता ने डॉक्टर घोष की दी दवा की एक खुराक एक कप में डालकर पी और ऊपर से दूध पी लिया। मॉर्फिन की 8 गोलियां शांता के पेट में पहुंच चुकी थी। मैं क्लिनिक जा रहा हूं, वो बोला, तुम आराम करो। शांता ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और बिस्तर पर लेट गई। उसने आंखें बंद कर ली। डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गया लेकिन वह इमारत से बाहर नहीं गया। वह 10 मिनट सामने बरामदे में खड़ा इंतजार करता रहा और फिर दबे पांव वापस लौटा। शांता खर्राटे भर रही थी। उसने उसे नाम लेकर पुकारा, लेकिन उसके कान पर जूं भी नहीं रेंगी। संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाते हुए डॉक्टर ने ग्लास उठाया और उसे अच्छी तरह धोकर किचन में रख दिया। फिर उसने डॉक्टर घोष की दवा की दो खुराकें बाथरूम में बहाकर बाथरूम के सिंक को खूब अच्छी तरह से धो दिया। अब बाद में जब वो मरी हुई पाई जाती तो यही समझा जाता कि शांता अपनी लापरवाही और भुलक्कड़पन की आदत की वजह से दवा ज्यादा पी गई थी और जान से हाथ धो बैठी थी। डॉक्टर घोष खुद गवाह होता कि शांता को विशेष रूप से चेतावनी दी गई थी कि दवा ज्यादा पीना खतरनाक हो सकता है। किसी को कोई शक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। उसके बाद वो कोई एक घंटा भर घर में ठहरा। फिर जब शांता की सांस भारी होने लगी और नब्ज मंद पड़नी महसूस होने लगी तो वो मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपने क्लिनिक को रवाना हो गया। बाकी का सारा दिन डॉक्टर वर्मा अपने क्लिनिक में बैठा सुखद समाचार के आगमन की प्रतीक्षा में बेचैन होता रहा। उसे आशा थी कि स्कूल से वापस आकर बच्चे या दोपहर को खाना पकाने वाली नौकरानी या कोई अड़ोसी पड़ोसी शांता को मरा हुआ पाएगा और उसे तुरंत क्लिनिक में फोन करके खबर देगा। फोन तो नहीं आया। साधारणतया 2 बजे क्लिनिक बंद होता था और 2:15 तक वो घर के लिए रवाना हो जाता था। उस रोज वो 4 बजे तक बैठा रहा। अंत में हार कर वो घर पहुंचा। बड़ा लड़का उसे अपने कंपाउंड में खेलता हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर का माथा ठनका। तुम्हारी माँ कैसी है? उसने लड़के से सवाल किया। ठीक है, लड़का बोला, सोई पड़ी है। डॉक्टर अपनी बीवी के पास पहुंचा। वो सोई ही पड़ी थी। उसकी सांस एकदम नियमित रूप से चल रही थी। डॉक्टर ने अपनी तकदीर को हजार हजार गालियां दी। रात तक शांता की सांस और नब्ज एकदम नॉर्मल हो गई। अगली सुबह जाकर कहीं शांता की नींद टूटी। हे भगवान, वो जम्हाई लेते हुए बोली, बहुत सोई मैं। हाँ, डॉक्टर मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा ही है, तुम्हें तो आराम की बड़ी जरूरत है ना। मुझे ऊंग सी आ रही है, वो बोली। बड़ी तेज दवा देते हैं डॉक्टर घोष। तुम्हारे भले के लिए ही है शांता, डॉक्टर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ बोला, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी ना। क्या हाजमा पाया था कमबख्त ने, डॉक्टर दांत पीसता हुआ मन ही मन बोला। मॉर्फिन की 8 गोलियां पचा गई। फिर डॉक्टर ने उसके कत्ल की 3री योजना बनानी आरंभ कर दी। जब उसकी नई नई शादी हुई थी तब वो डिप्टीगंज में रहता था और अपनी बीवी के साथ सैर करने अक्सर जीतगढ़ की पहाड़ी पर चला जाता था। उसे याद था कि पहाड़ी की ढलुआ सड़कों के इर्द गिर्द गहरी खाइयां थी, वहां एक एक्सीडेंट स्टेज किया जा सकता था। एक शाम को उसने अपनी कार पर इस इलाके की तमाम सड़कों का चक्कर लगाया। मीनार के पास की एक सड़क पर उसे एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जहां से कार लुढ़क जाती तो बहुत गहरे खड्डे में जा गिरती। वहां सड़क के साथ रेलिंग भी नहीं थी और सर्दियों के उन दिनों में रास्ता भी सुनसान पड़ा रहता था। कमला नगर में शांता की एक बहन रहती थी जिससे कभी कभार मिलने वो खुद कार चलाती उसी रास्ते से जाया करती थी। बाद में यही समझा जाता कि वो ताजी ताजी बीमारी से उठी थी, इसलिए लापरवाही कर बैठी, ठीक से कार चला न पाई और एक्सीडेंट कर बैठी। एक चांदनी रात को उसने बड़े अनुराग पूर्ण स्वर में शांता से कहा, शांता चलो आज कहीं घूमने चलें। कहां? शांता खुशी से चहकती हुई बोली, वहीं जहां हम सब जाया करते थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी। ठीक है ठीक है। जाने से पहले डॉक्टर ने बच्चों को समझा दिया था कि उनकी माँ अपनी बहन के घर कमला नगर जा रही थी। खुद उसे क्लिनिक में थोड़ा काम था इसलिए वो जाती हुई उसे क्लिनिक में छोड़ती हुई जाएगी और वापसी में साथ लेगी। इस प्रकार उसने पहले ही वो बुनियाद तैयार कर दी थी कि दुर्घटना के वक्त वो घटनास्थल पर नहीं होगा। वो दोनों कार पर सवार होकर जीतगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचे। डॉक्टर ने पूर्व निर्धारित स्थान पर कार खड़ी कर दी। उसी कार का इंजन बंद कर दिया। जाने से पहले डॉक्टर ने बच्चों को समझा दिया था कि उनकी माँ अपनी बहन के घर कमला नगर जा रही थी। खुद उसे क्लिनिक में थोड़ा काम था इसलिए वो जाती हुई उसे क्लिनिक में छोड़ती हुई जाएगी और वापसी में साथ लेती आएगी। इस प्रकार उसने पहले ही वो बुनियाद तय कर ली थी कि दुर्घटना के वक्त वो घटनास्थल पर नहीं होगा। वो घटना स्थल पर नहीं होगा। वो दोनों कार पर सवार होकर जीतगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचे। डॉक्टर ने पूर्व निर्धारित स्थान पर कार खड़ी कर दी। उसने कार का इंजन बंद किया और उसे गियर में ही लगा रहने दिया ताकि कहीं वो भी उसके भीतर बैठे बैठे लुढ़क कर खड्डे में न जा गिरे। कार की हैंडब्रेक खराब थी और इस बात की शांता को भी खबर थी। मैं जरा कार के पहिए के नीचे कोई पत्थर वत्थर लगा दूं, वो बोला, कहीं कार लुढ़क कर खड्डे में न जा गिरे। अच्छा, तुम कार में ही बैठो। अच्छा। उसने कार से बाहर निकलकर दो ईंटें तलाश की और उनको कार के पिछले पहियों के आगे लगा दिया। फिर वो वापस कार में आकर बैठा। आओ थोड़ा पैदल घूमकर आए, शांता बोली। चलेंगे, अभी जल्दी क्या है, डॉक्टर बोला और एक बदमजा जिम्मेदारी की तरह। मैं जरा कार के पहिए के नीचे कोई पत्थर वत्थर लगा दूं, वो बोला, कहीं कार लुढ़क कर खड्डे में न जा गिरे। अच्छा, वो बोली, तुम कार में ही बैठो, डॉक्टर ने बोला। अच्छा, वो बोली। उसने कार से बाहर निकलकर दो ईंटें तलाश की और उनको कार के पिछले पहियों में आगे लगा दिए और वो फिर वापस कार में आकर बैठा। आओ थोड़ा पैदल घूमकर आए, शांता बोली। चलेंगे, अभी जल्दी क्या है, डॉक्टर बोला और एक बदमजा जिम्मेदारी की तरह उसने शांता को अपनी बाहों में भर लिया। अनायास उसे किरण की याद आ गई। उसे यूं लगा जैसे फूलों की डाली के स्थान पर कांठों की झाड़ी उसकी बाहों में आ गई हो। लेकिन वो अपने मन के भाव छुपाता हुआ शांता को प्यार करता रहा और उसे रस भरी बातें करता रहा। शांता उसकी छाती पर सिर टिकाए आंखें बंद कर बैठी रही। डॉक्टर ने चुपचाप कार को गियर में से निकाल दिया। डॉक्टर ने क्या किया था इसकी खबर शांता को न लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शांता से अलग हो गया। जरा देखो पहिए के नीचे लगी ईंटें सरक तो नहीं गई, वो बोला और कार से बाहर निकल आया। शांता ने बड़े आसक्ति भरे भाव से उसकी ओर देखा और सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। वो आंखें बंद किए हुए किसी रंगीन सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। यही तो डॉक्टर चाहता था। वो कार के पीछे के भाग में पहुंचा। उसने नीचे झुककर कार के बाएं पहिए के नीचे लगी ईंट बाहर खींच ली और फिर दाएं पहिए की ओर पड़ा। दूसरी ईंट निकालते ही कार नीचे को लुढ़कने लगती और शांता के संभल पाने से पहले ही खड्डे में गिरी पड़ी होती। उसने दूसरी ईंट भी निकाल दी और कार को एक धक्का दिया। क्या कर रहे हो, शांता ने आवाज लगाई। कुछ नहीं, डॉक्टर बोला, जरा पहियों को देख रहा हूँ। मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, डॉक्टर बोला। पहिए के नीचे वो दोनों ईंटें हटा चुका था। वो कार को एक धक्का भी दे चुका था लेकिन कार अपने स्थान से हिली भी नहीं थी। क्या माजरा था, डॉक्टर खींच उठा। उसने कार पर दोनों हाथ दिखाकर पूरी शक्ति से धक्का दिया पर कार टस से मस न हुई, जबकि उसे तो बिना धक्के के ही लुढ़कने जाना था। क्या कर रहे हो, शांता ने फिर पूछा। डॉक्टर ने उत्तर न दिया। कहीं कार के पहियों के आगे कोई रुकावट तो नहीं थी, उसने नीचे झुककर देखा। नहीं, कोई रुकावट नहीं थी। तभी उसके कानों में समीप आती हुई एक गाड़ी की आवाज पड़ी। हैरान परेशान डॉक्टर ने घूमकर सड़क की ओर देखा। उसे सामने से एक कार आती हुई दिखाई दी। कुछ ही क्षणों में वो कार उससे कोई 20 गज परे आकर रुक गई। डॉक्टर को रुकने वाली कार के भीतर एक युवा जोड़े की उपस्थिति का आभास हुआ। शायद वो एकांत में मौज करने आए थे। हताश डॉक्टर कार में आ बैठा। आप कार को गियर में लगाना भूल गए थे, शांता ने उसे बताया, इसलिए गियर मैंने लगा दिया था। अच्छा किया तुमने, डॉक्टर खोखले स्वर में बोला, वरना कार खड्डे में लुढ़क गई होती। उसने दूसरी कार में मौजूद युवा जोड़े की तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। उनका जल्दी वहां से टलने का इरादा कोई नहीं मालूम होता था। डॉक्टर ने एक आह भरी, कार स्टार्ट की और घर आ गया। वो योजना भी फेल हो चुकी थी। तब तक उसकी मानसिक दशा पागलों जैसी हो गई थी। उसका जी जाने लगा था कि वो बिना किसी तकल्लुफ के कभी भी कहीं भी शांता का गला घोट ले। तब तक किरण भी उतावली होने लगी थी। वो डॉक्टर पर दबाव डालने लगी थी कि वो जल्दी से जल्दी अपनी बीवी को तलाक हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दे। डॉक्टर जबरदस्ती इस डर से नहीं करता था कहीं वो नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए चली न जाए, लेकिन लगता उसे ऐसा था जैसे किरण के शरीर को हासिल करना उसकी जिंदगी का आखिरी मकसद था
इसलिए अब वो भी उतावला हो उठा था और उसका अपनी बीवी से फौरन पीछा छुटाने का इरादा था। अगली योजना जो डॉक्टर ने तैयार की वो उसकी निगाह में फुल प्रूफ प्लान थी। उसे एक ऐसा रेलवे क्रॉसिंग मालूम था जिस पर फाटक नहीं लगा हुआ था। उसने शांता का वहां कार एक्सीडेंट करने का फैसला किया। उस रोज उसने डिनर के बाद अपनी पत्नी की गैरहाजिरी में बच्चों को वही पुरानी कहानी सुनाई कि वो क्लिनिक जा रहा है और शांता अपनी बहन के घर। वापसी में शांता उसे क्लिनिक से साथ लेकर आने वाली थी। संयोगवश वो रेलवे क्रॉसिंग भी शांता के बहन के घर के रास्ते में ही आता था, इसलिए एक्सीडेंट के बाद किसी को हैरानी न होती कि शांता वहां क्या कर रही थी। शांता को डॉक्टर ने कहा कि वो दोनों सैर करने जा रहे हैं। दोनों कार में सवार हुए। वो कार को अपने क्लिनिक के समीप ले आया। तुम कार में ही बैठो, वो बोला। मुझे क्लिनिक में थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ, और वो कार से निकलकर क्लिनिक की तरफ बढ़ गया। जिस इमारत में उसका क्लिनिक था उसमें और भी ऑफिस थे और रात को रखवाली के लिए चौकीदार भी वहां रहता था। डॉक्टर ने जानबूझकर चौकीदार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बोला, आज मैंने काफी रात तक काम करना है, मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न तैयार करनी है। तुम किसी को मेरे क्लिनिक में आने मत देना, कहीं ऐसा ना हो कि बत्ती जलकर देख मेरा कोई पेशेंट ही चला आ जाए और मुझे डिस्टर्ब कर दे। बहुत अच्छा साहब, चौकीदार ने बोला। 11:30 बजे के करीब मेरी पत्नी मुझे लेने आएगी, कहीं उसे भी भीतर आने से मत रोकना। नहीं साहब, चौकीदार दांत निकालता हुआ बोला, मैं बीबी जी को तो खूब अच्छी तरह से पहचानता हूँ। डॉक्टर अपने क्लिनिक में आ गया। उसने सारी बत्तियां जला दी और दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। फिर उसने क्लिनिक के पिछवाड़े की एक खिड़की खोली। उसका क्लिनिक ग्राउंड फ्लोर पर था और वह खिड़की पिछवाड़े की एक संकरी सी गली में खुलती थी। डॉक्टर उस खिड़की में से चुपचाप बाहर कूद गया और अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। वहां से दोनों इंडिया गेट पहुंचे। कुछ देर वहां बैठे रहे और हल्की फुल्की बातें करते रहे। उसके बाद वो वहां से भी रवाना हो गए। कुछ देर वो नगर की विभिन्न सड़कों पर कार चलाता रहा, फिर उसने घड़ी देखी। 10:30 बजे थे। गाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर 11:10 तक पहुंचती थी। एक एक कॉफी पीते हैं, वो बोला। शांता ने खुशी से हाँ कर दी। वो कनॉट प्लेस में स्टैंडर्ड में जा बैठे। कॉफी आई तो डॉक्टर ने बड़ी चतुराई से शांता के कप में नींद की गोली डाल दी। शांता बिना किसी प्रकार का संदेह किए हुए कॉफी पी गई। जब वो रेस्टोरेंट के बाहर निकले तो शांता शिकायत करने लगी कि उसे बड़ी जोर से नींद आ रही है। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि वो सीधे घर ही चल रहे हैं। इस बार कार स्टार्ट होते ही शांता ने सीट की पीठ के साथ सिर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। कार की रफ्तार पकड़ने पर वो खर्राटे भर रही थी। डॉक्टर खुश था। अब उसने कार को क्रॉसिंग पर ले जाकर खड़ा करना था और शांता को स्टेयरिंग के पीछे सरका देना था। उसके बाद वो वापस अपने ऑफिस पहुंच जाता, खिड़की के रास्ते से ऑफिस में दाखिल होता और पहले से ही तैयार की हुई इनकम टैक्स रिटर्न की निकाल कर सामने रख देता। वो शांता का आधी रात तक इंतजार करता रहा और फिर चौकीदार के सामने चिंता व्यक्त करते हुए पूछताछ करनी आरंभ कर देता। डॉक्टर उजाड़ सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग से अभी आधा मील दूर ही था कि कार फर फर करने लगी और फिर रुक गई। डॉक्टर का दिमाग भन्ना गया। इतना कुछ सोचा, एक मामूली सी बात ना सोची। पेट्रोल, कार में पेट्रोल खत्म हो चुका था। तकदीर की मार, वो स्कीम भी फेल हो गई। फिर उसके परेशान दिमाग में एक नई तरकीब पनपी। बिजली, बिजली का झटका। यही एक तरकीब बाकी रह गई थी जो उसने अपनी बीवी पर नहीं आजमाई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा इस कहानी का पहला भाग, बीवी का चश्मा? उम्मीद है आपको पसंद आ रही है। बस थोड़ा सा इंतजार और मैं फिर हाजिर होंगी आप सबके सामने इसी कहानी का दूसरा भाग लेकर। तब तक दुआओं में याद रखिएगा चलते चलते। नमस्कार, अलविदा।
चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। चलते चलते सारी राह चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते सारी राह चलते चलते।
आवाज की दुनिया के दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केड़ो हाल आहे। मैं संगीता पमनानी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने मेरी कहानी बीवी का चश्मा का दूसरा भाग लेकर। तो आप सभी को याद होगा कि डॉक्टर साहब ने कितनी ही तरकीबें आजमाई अपनी बीवी को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन कोई भी तरकीब जो है वो काम नहीं आई। तो उनके परेशान दिमाग में एक नई तरकीब पनपी है जो है बिजली, बिजली का झटका। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर साहब अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं कि नहीं। चले एक रोज उसने शांता को सलाह दी कि अगर वो सोने से पहले गर्म पानी से नहाया करे तो इससे उसके शरीर की वो टूटन और दर्द सब दूर हो जाएंगे जिसकी वो अक्सर शिकायत किया करती थी। एक तो वो उसका पति था, ऊपर से प्रसिद्ध डॉक्टर भी था, भला वो उसकी बात क्यों न मानते, विशेष रूप से तब जबकि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पति भक्त उस औरत को क्या मालूम था कि उसका पति परमेश्वर उसकी हत्या के 4 प्रयत्न पहले कर चुका था। उस रात सोने से पहले उसने अपनी पत्नी के लिए बाथरूम में गर्म पानी भरा और बाथरूम के पृष्ठ भाग में दीवार के साथ बने एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर एक बिजली का हीटर भी रख दिया ताकि बाथरूम का वातावरण गर्म हो जाता और शांता को ठंड न महसूस होती। योजना ये थी कि शांता जिस वक्त पानी में नहा रही होगी उस वक्त डॉक्टर बाहर की दीवार पर तस्वीर टांगने के लिए एक कील ठोकने लगेगा। दीवार पर जोर जोर से पड़ती हथौड़ी से दीवार में पैदा होने वाली धमक से उसकी दीवार के दूसरी ओर बाथरूम में छोटे से प्लेटफॉर्म पर रखा हीटर वहां से सरक कर पानी में जा गिरेगा और शांता बिजली का झटका खाकर मर जाएगी। दरवाजा भीतर से बंद होगा, कोई सपने में भी नहीं सोच सकेगा कि शांता की हत्या हो गई थी। शांता के दरवाजा बंद कर लेने के बाद डॉक्टर कान लगाए सुनने लगा। जब उसे अपनी पत्नी के भारी भरकम शरीर के पानी में दाखिल होने की आवाज सुनाई दी तो वो कील पर हथौड़ी से प्रहार करने लगा। 15-20 प्रहार कर चुकने के बाद वो ठिठका और कान लगाकर सुनने लगा। शांता, उसने आवाज लगाई, पानी ज्यादा गर्म तो नहीं? जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन भीतर से शांता की मीठी आवाज आई, ठीक है जी। अब क्या गड़बड़ हो गई, वो अपने आप को कोसता हुआ सोचने लगा। फिर सन्नाटा सा छा गया, डॉक्टर की उम्मीद बंधी, हो गया काम। शांता, उसने आवाज लगाई, हां जी। हे भगवान, ये मुसीबत खत्म भी होगी, डॉक्टर अपने बाल नोचने लगा। अब आवाज बाथरूम के दूसरे कोने से आती मालूम हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब शांता बाहर निकली तो डॉक्टर सचमुच तस्वीरें टांग रहा था। हीटर कैसा रहा, डॉक्टर ने पूछा। बढ़िया, वो बोली, लेकिन प्लेटफॉर्म पर रखा होने की वजह से मुझे बहुत गर्मी लगने लगी थी इसलिए मैंने उसे उठाकर फर्श पर रख दिया था। लानत, लानत, डॉक्टर कुड़ कर रह गया। अगले दिन उसे नया झटका लगा, किरण ने अपना इस्तीफा उसके सामने आकर रख दिया। मुझे आपकी अपनी बीवी से तलाक लेने की नीयत नहीं मालूम होती, वो बोली, आप लगता है मुझे बरगला कर खराब करना चाहते हैं। डॉक्टर ने गिड़गिड़ाते हुए उससे कुछ और मोहलत मांगी और इस बार एक ऐसी तरकीब सोची जो उनकी निगाह में किसी भी सूरत में फेल हो ही नहीं सकती। उसने फैसला किया कि अपनी बीवी का कत्ल करने की वो उसकी आखिरी कोशिश होगी, अगर वो कोशिश भी नाकाम रही तो किरण का ख्याल अपने मन से निकाल देगा, जो कि असंभव था, या खुद जान दे देगा।
एक रोज उसने एक पब्लिक टेलीफोन से अपनी क्लिनिक के नंबर पर टेलीफोन किया। दूसरी ओर से किरण की आवाज आने पर वो आवाज बदलकर बड़े क्रूर स्वर में बोला,
डॉक्टर वर्मा को बुलाओ।
डॉक्टर वर्मा इस वक्त क्लिनिक में नहीं है, किरण की आवाज आई। कोई मैसेज है तो बता दीजिए।
हाँ सुन लो मैसेज, उस हरामजादे को बता देना कि उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं।
जब वो क्लिनिक पहुंचा तो भयभीत किरण ने उसे वो मैसेज दे दिया। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस का एक अधिकारी उससे पूछताछ करने क्लिनिक में आया, लेकिन वो कोरा ही वापस चला गया। डॉक्टर को नहीं मालूम था कि फोन करने वाला व्यक्ति कौन था और उसने ऐसा क्यों कहा था। 2-3 दिन बाद एक रात को उसने घर पर शांता को फोन किया और आवाज बदलकर वही संदेश उसे भी सुना दिया। शांता भी डर गई। पुलिस को फिर रिपोर्ट की गई, लेकिन इस बार भी नतीजा 0 निकला। तफ्तीश आगे न बढ़ी, कोई सूत्र ही उपलब्ध नहीं था। फिर डॉक्टर ने अखबार में से शब्द काट काट कर अपने आप को भेजने के लिए एक धमकी भरा पत्र तैयार किया। वो पत्र उसने डाक से अपने आप को भेज दिया और प्राप्त होने पर उसे पुलिस को सौंप दिया। अब कत्ल की काफी बुनियाद तैयार हो चुकी थी। फिर वो एक दिन किसी काम से मेरठ गया। वहां से उसने चोरी छुपे एक खतरनाक बम खरीदा। वापस आकर वो बम उसने अपनी अलमारी में छुपा कर रख दिया। एक रात शांता ने उससे कहा कि वो कल सुबह बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद अपनी बहन के यहाँ जाना चाह रही थी। डॉक्टर ने उसे कह दिया कि गाड़ी ले जाए, कल तो वो खुद टैक्सी से चला जाएगा। रात के 2 बजे वो चुपचाप उठा। उसने गैराज में जाकर कार का हुड उठाया और बम को इस प्रकार फिक्स किया कि इग्निशन के ऑन होते ही बम फट जाता। अब शांता का खात्मा निश्चित था। बाद में तफ्तीश होने पर यही समझा जाता कि हत्यारा मारना तो डॉक्टर को चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश शिकार हो गई बेचारी उसकी बीवी शांता। अगले दिन बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद डॉक्टर अभी घर पर ही था कि शांता बहन के घर जाने के लिए तैयार हो गई। वो गैराज से कार निकालने चली गई। डॉक्टर कलेजा थामे खिड़की के पास पहुंचा। उसने शांता को गैराज का दरवाजा खोलते और फिर कार में बैठते हुए देखा। शांता ने इग्निशन में चाबी लगाई। डॉक्टर ने आंखें बंद कर दी। अभी एक जोर का धमाका होगा और शांता समेत कार के परखच्चे उड़ जाएंगे। वह आंख बंद कर इंतजार करने लगा, लेकिन धमाके के स्थान पर इसके कानों में इंजन के चालू होने की आवाज पड़ी। सत्यानाश! उसने आंखें खोली और गैराज की ओर देखा। शांता कार को गियर में डाल रही थी। बम फटा ही नहीं था। पता नहीं बम खराब था या बेचने वाले ने उसे जानबूझकर ठगा था, या उसे बम को ठीक से इग्निशन से जोड़ना नहीं आया था। उस क्षण डॉक्टर हार के एहसास से पागल सा हो गया। शांता! उसने आवाज लगाई। शांता ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। डॉक्टर ने उसे रुकने का संकेत किया। शांता ने इंजन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। डॉक्टर घर से बाहर निकला और गैराज की ओर लपका। क्या बात है? वो समीप पहुंचा तो शांता ने पूछा। बताता हूँ, डॉक्टर बोला। वह कार का दरवाजा खोलकर उसकी बगल में बैठ गया। फिर एकाएक एक शेर की तरह शांता पर झपटा। उसने अपने दोनों हाथों से शांता की गर्दन दबोच ली। शांता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुटकर रह गई। वो सिर पटकने लगी और हाथ पांव झटकने लगी। उसका चश्मा उसकी नाक से छिटक कर डैशबोर्ड से टकरा कर नीचे जा गिरा। डॉक्टर के अधेड़ शरीर में पता नहीं कहां से इतना बल आ गया था कि उसने एक शैतानी शिकंजे की तरह शांता की गर्दन जब तक जकड़े रखी जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। शांता के मर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसने क्या कर डाला था, लेकिन वो घबराया नहीं। अभी भी यह जाहिर किया जा सकता था कि जो आदमी डॉक्टर को धमकियां दे रहा था, डॉक्टर तक पहुंच न होती पाकर उसने डॉक्टर की पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसने अपनी उखड़ी सांसों को व्यवस्थित किया, शांता का चश्मा उठाया और उसे अपने बैग में डाल दिया। फिर वो कार से बाहर निकला। उसने गैराज का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया।
उसने कार का हुड उठाया, भीतर से बम और उससे संबंध तारे निकालकर उन्हें गैराज में एक स्थान पर छुपा दिया। फिर उसने शांता का बैग अपने कंधे पर लटकाया और उसके भारी भरकम शरीर को किसी प्रकार अपने कंधे पर लादा। राम राम करता वो बेडरूम में पहुंचा। उसने लाश को पलंग पर डाल दिया और पलंग की चादर वगैरह को इस प्रकार अव्यवस्थित किया जैसे कि हत्यारे की और शांता की हाथापाई हुई हो। फिर उसने शांता की साड़ी उतारकर उसे वो गाउन पहना दिया था जो हमेशा पहना करती थी। बैग उसने वार्डरोब की उस खूंटी पर टांग दिया जहां वो हमेशा टांगा करती थी। फिर उसे शांता के पैरों में पड़ी सैंडलों का ख्याल आया। हे भगवान, भारी गलती होते होते बची थी। उसने सैंडलें उतारी और उन्हें पिछले बरामदे में पड़े जूतों के रैक में रख दिया। वहां से उसने शांता के घर पर पहनने वाली चप्पलें उठाई और उन्हें लाकर पलंग के समीप रख दिया। जो स्टेज उसने सेट की थी वह उससे काफी संतुष्ट था। लगता था कि हत्यारा पलंग पर सोई पड़ी शांता पर झपट पड़ा था, अपना बदला उसके पति के स्थान पर पत्नी से चुकाया था। उसके बाद डॉक्टर ने बड़े इत्मीनान से गैराज से गाड़ी निकाली और अपने क्लिनिक पहुंच गया। दोपहर बाद पुलिस ने उसे क्लिनिक में फोन करके सूचना दी कि किसी ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस केस का कार्यभार इंस्पेक्टर अमीठिया के पास था। वो मेरे से परिचित था। घटनास्थल पर अमीठिया मुझे भी साथ ले गया। उसने मुझसे ले लिया था कि मैं चुप रहूंगा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन वहां पहुंचकर मैं चुप नहीं रह सका। मैं काफी देर तक चुप रहा, लाश देखकर चुप रहा, शोकाग्रस्त पति को देखकर चुप रहा, रोते हुए बच्चों को देखकर चुप रहा, अमीठिया और पुलिस फोटोग्राफर को काम करते हुए देखकर चुप रहा, लेकिन अंत में बोल ही पड़ा। जरा सुनो, मैंने अपने दोस्त के कान में बोला। अमीठिया ने प्रश्न सूचक नेत्रों से मेरी ओर देखा। मैं उसे बांह पकड़कर एक और ले गया और धीरे से बोला, मृतक की नाक और कनपट्टियों को देखा तुमने? देखा है, क्या खास बात है उसमें? अमीठिया बोला। नाक और कनपट्टियों पर चश्मे के फ्रेम का दबाव महसूस हो रहा है। ठीक है, देखा मैंने, लेकिन चश्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अमीठिया ने गर्दन हिलाई। चश्मा वार्डरूम में लटके बैग में से बरामद हुआ। हम दोनों ने बड़े गौर से चश्मे का मुआयना किया। बहुत मोटे लेंसों वाला चश्मा है ये, मैं बोला। तो क्या हुआ? अमीठिया बोला। ऐसा मोटा चश्मा लगाने वाली का तो इनके बिना गुजारा नहीं होता होगा। इसके बिना तो वो एक कदम चलने से भी ठोकर खाकर गिर जाती होगी। तो जिस शख्स की आंखें इतनी कमजोर हो उसका चश्मा तो उसके पलंग के अगल बगल में कहीं मौजूद होना चाहिए, ताकि नींद से उठते ही वो हाथ बढ़ाकर चश्मा उठाए और आंखों पर लगा ले। पर चश्मा बरामद हुआ है पलंग से दूर वार्डरोब में लटके बैग में से। क्या ये बात तुम्हें जचती है कि मरने वाली ने खुद चश्मा बैग में रखा हो और बैग को ले जाकर वार्डरोब में टांग आई? अमीठिया की गर्दन खुद ही इंकार में हिलने लगी। यूं तो वो पलंग पर वापस लौटते समय अंधों की तरह रास्ता टटोलती और ठोकरें खाती आती, वो बोला। एग्जैक्टली, यानी कि चश्मा बैग में किसी और ने रखा है, बैग को वार्डरोब में किसी और ने पहुंचाया है। बिल्कुल। किसने? जाहिर है हत्यारे ने। तुम्हारा मतलब है कि चश्मा शांता और हत्यारे के बीच हुई हाथापाई के दौरान शांता की नाक से गिर गया, फिर बाद में हत्यारे ने चश्मा उठाकर बैग में रखा और बैग को वार्डरूम में टांग दिया। काहे को, हत्यारे को ऐसी जहमत उठाने की जरूरत क्या पड़ी थी? वो चश्मा लाश के पास ही गिरा होता छोड़ जाता, उसे क्या फर्क पड़ता? लेकिन चश्मा उठाया तो गया था। यकीनन उठाया गया था, और वहां से उठाया गया था जहां की वास्तव में हत्या हुई थी। जब लाश को यहां बेडरूम में शिफ्ट किया गया था, ये जाहिर करने की कोशिश की गई थी कि हत्या यहां हुई है, तो वो चश्मा कहीं और पड़ा पाया जाना मुनासिब न लगता। यानी कि हत्यारे को असली मौका वारदात से चश्मा उठाना तो सूझा, लेकिन ये न सूझा कि इतनी कमजोर निगाह वाली शांता का चश्मा उससे दूर वार्डरोब में नहीं, उसके सिरहाने होना चाहिए था। इससे क्या साबित होता है? इससे तो ये साबित होता है कि हत्या कहीं और की गई थी। ये भी साबित होता है कि हत्यारा भी वो नहीं है जो समझा जा रहा है। कथित हत्यारे ने हत्या कहीं और की होती तो उसे चश्मे में कोई दिलचस्पी न होती। वो तो उसका काम करता और चलता बनता। चश्मे को यूं संभाल कर रखना जाहिर करता है कि हत्यारा घर का ही कोई आदमी है। उस आदमी ने हत्या यहाँ की होती तो चश्मा यहीं कहीं गिरता, जिससे कि उसे एक स्वाभाविक क्रिया के तौर पर उठाकर पलंग के आसपास कहीं रख दिया होता। लेकिन चश्मा क्योंकि कहीं और से असली घटनास्थल से उठाकर बैग में रखा गया था, और बैग का रखने का उचित स्थान क्योंकि वार्डरोब था, इसलिए चश्मा भी बैग के साथ वार्डरोब में पहुंच गया। बैग का उचित स्थान वार्डरोब है। अब यह तो घर का ही आदमी मालूम हो सकता है। घर का आदमी तो एक ही है, अमिठिया बोला, और उसकी नजर डॉक्टर की ओर घूम गई। एक बात और भी है, मैं धीरे से बोला, जो सिद्ध करती है कि हत्या यहाँ बेडरूम में नहीं हुई है। तो क्या? अमिठिया ने डॉक्टर पर से निगाह हटाकर मेरी तरफ देखा। मैंने फर्श पर पलंग के पास रखे जनाना चप्पलों के जोड़े की तरफ संकेत किया। मामूली चप्पलें हैं जो औरत घर में पहनती है, अमिठिया बोला। चप्पलों में कुछ नहीं है, इनके फर्श पर पड़ी होने के तरीके पर गौर करो। क्या गौर करूं? इनके पंजों का रुख पलंग की तरफ है। तो क्या हुआ? जब कोई सोने के लिए पलंग पर पहुंचता है तो चप्पलें उतार कर बिस्तर के हवाले होता है, तो चप्पलों के पंखों का रुख पलंग से परे की तरफ होता है। लेकिन अगर कोई और आदमी पलंग पर मौजूद शख्स की चप्पलें उठाकर पलंग के पास रखने जाता है, तो एक स्वाभाविक क्रिया के तौर पर वो चप्पलें पलंग के पास इस प्रकार रखता है कि उनके पंजों का रुख पलंग की तरफ होता है। चप्पलें हाथ में ही उठती इस प्रकार है, चाहो तो उठाकर देख लो। अमिठिया ने ऐसी कोई कोशिश न की, लेकिन उसके चेहरे पर सहमति के भाव जरूर अंकित थे। ये बात स्पष्ट जाहिर होती है कि शांता खुद चप्पलें उतारकर पलंग पर नहीं लेती थी, बल्कि चप्पलें बाद में वहां पहुंचाई गई थी। इंस्पेक्टर साहब, जैसे चप्पलें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाद में पहुंचाई गई हों, वैसे ही शांता को भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कत्ल के बाद में यहां पहुंचाया गया था। लेकिन हत्यारे को हत्या कहीं और करके लाश यहां डालने की क्या जरूरत थी? उस हत्यारे को जरूरत नहीं थी कि जिसे कि हत्यारा समझा जाने की कोशिश की गई दिखाई दे रही है, लेकिन उसे थी जो कि वास्तव में हत्यारा था। वक्ती जुनून के हवाले होकर जरूर हत्यारा ऐसी जगह हत्या कर बैठा था जहां से लाश बरामद होने पर वो ये दावा न कर पाता कि हत्या किसी और ने की है। अमिठिया फिर डॉक्टर की तरफ देखने लगा। राजधानी में अभी हाल ही में ऐसा एक केस होकर हटा है, उसमें भी एक डॉक्टर एक गैर औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार था और इस वजह से अपनी अधेड़ बीवी से बेजार रहता था। लगता है यहाँ इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। यहाँ कोई गैर औरत तो दिखाई नहीं दे रही। अभी तुमने देखने की कोशिश कहाँ की है? जब कोशिश करोगे तो दिखाई दे जाएगी। कोशिश की गई और किरण के बारे में पता चली गया। पुलिस ने तत्काल किरण को मटेरियल विटनेस के तौर पर हिरासत में ले लिया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने घबराकर बता दिया कि डॉक्टर वर्मा उससे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन उसने डॉक्टर को कह दिया था कि उसे हासिल करने का एक ही तरीका है, वो है शादी। शादी वह कर नहीं सकता था क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था और तलाक संभव नहीं दिखाई दे रहा था। किरण से ही पुलिस को यह मालूम हुआ कि डॉक्टर किरण से और मोहलत भी मांगता जाता था और तलाक के लिए अर्जी भी नहीं देता था। इसका मतलब साफ था कि डॉक्टर पत्नी की हत्या करके उससे पीछा छुड़ाने का इरादा किए हुए था। नतीजतन डॉक्टर वर्मा को अपनी पत्नी की हत्या के संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। यूं तो डॉक्टर के खिलाफ पूरी रूप से कुछ सिद्ध कर पाना आसान नहीं था। उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। मक्तुला के चश्मे और चप्पलों वाली बात केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का दर्जा रखती थी। डॉक्टर को सजा दिलाने के लिए लंबी गहरी तफ्तीश और ढेरों सरगर्मी की जरूरत थी, लेकिन पुलिस की मुश्किल खुद डॉक्टर ने आसान कर दी। उसने खुद अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने न केवल अपना अपराध स्वीकार किया बल्कि अपनी बीवी की हत्या के पहले 5 असफल प्रयत्न के बारे में भी पुलिस को बता दिया। डॉक्टर वर्मा आज भी तिहाड़ जेल में है, जहां की उसका सेल ही उसका क्लिनिक बना हुआ है, जहां वह कानून के दुश्मनों और कानून के रखवालों का समान रूप से इलाज करते हैं। उनकी विनम्रता व सेवा भाव को देखकर कोई भी अविश्वास करने को तैयार नहीं होता कि वो शख्स अपनी ही पत्नी के कत्ल का अपराधी था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी?
बीवी का चश्मा। उम्मीद है आपको इस कहानी का दूसरा भाग भी पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इन कहानियों पर अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स जरूर दें। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सब मेरी कहानी सुन रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं। मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी एक बार फिर आप सभी से चलते चलते मेरी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।
चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते, सारी राह चलते चलते।
आवाज की दुनिया के दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केड़ो हाल आहे। मैं संगीता पमनानी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने मेरी कहानी बीवी का चश्मा का दूसरा भाग लेकर। तो आप सभी को याद होगा कि डॉक्टर साहब ने कितनी ही तरकीबें आजमाई अपनी बीवी को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन कोई भी तरकीब जो है वो काम नहीं आई। तो उनके परेशान दिमाग में एक नई तरकीब पनपी है, जो है बिजली, बिजली का झटका। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर साहब अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं कि नहीं। चलें। एक रोज उसने शांता को सलाह दी कि अगर वो सोने से पहले गर्म पानी से नहाया करे तो इससे उसके शरीर की वो टूटन और दर्द सब दूर हो जाएंगे, जिसकी वो अक्सर शिकायत किया करती थी। एक तो वो उसका पति था, ऊपर से प्रसिद्ध डॉक्टर भी था, भला वो उसकी बात क्यों न मानती, विशेष रूप से तब जबकि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पति भक्त उस औरत को क्या मालूम था कि उसका पति परमेश्वर उसकी हत्या के 4 प्रयत्न पहले कर चुका था। उस रात सोने से पहले उसने अपनी पत्नी के लिए बाथरूम में गर्म पानी भरा और बाथरूम के पृष्ठ भाग में दीवार के साथ बने एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर एक बिजली का हीटर भी रख दिया, ताकि बाथरूम का वातावरण गर्म हो जाता और शांता को ठंड न महसूस होती। योजना ये थी कि शांता जिस वक्त पानी में नहा रही होगी, उस वक्त डॉक्टर बाहर की दीवार पर तस्वीर टांगने के लिए एक कील ठोकने लगेगा। दीवार पर जोर जोर से पड़ती हथौड़ी से दीवार में पैदा होने वाली धमक से उसकी दीवार के दूसरी ओर बाथरूम में छोटे से प्लेटफॉर्म पर रखा हीटर वहां से सरककर पानी में जा गिरेगा और शांता बिजली का झटका खाकर मर जाएगी। दरवाजा भीतर से बंद होगा। कोई सपने में भी नहीं सोच सकेगा कि शांता की हत्या हो गई थी। शांता के दरवाजा बंद कर लेने के बाद डॉक्टर कान लगाए सुनने लगा। जब उसे अपनी पत्नी के भारी भरकम शरीर के पानी में दाखिल होने की आवाज सुनाई दी तो वो कील पर हथौड़ी से प्रहार करने लगा। 15-20 प्रहार कर चुकने के बाद वो ठिठका और कान लगाकर सुनने लगा। शांता, उसने आवाज लगाई, पानी ज्यादा गर्म तो नहीं? जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भीतर से शांता की मीठी आवाज आई, ठीक है जी। अब क्या गड़बड़ हो गई, वो अपने आप को कोसता हुआ सोचने लगा। फिर सन्नाटा सा छा गया। डॉक्टर की उम्मीद बंधी, हो गया काम। शांता, उसने आवाज लगाई, हां जी। हे भगवान, ये मुसीबत खत्म भी होगी, डॉक्टर अपने बाल नोचने लगा। अब आवाज बाथरूम के दूसरे कोने से आती मालूम हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब शांता बाहर निकली तो डॉक्टर सचमुच तस्वीरें टांग रहा था। हीटर कैसा रहा, डॉक्टर ने पूछा। बढ़िया, वो बोली, लेकिन प्लेटफॉर्म पर रखा होने की वजह से मुझे बहुत गर्मी लगने लगी थी, इसलिए मैंने उसे उठाकर फर्श पर रख दिया था। लानत लानत, डॉक्टर कुड़ कर रह गया। अगले दिन उसे नया झटका लगा। किरण ने अपना इस्तीफा उसके सामने आकर रख दिया। मुझे आपकी अपनी बीवी से तलाक लेने की नीयत नहीं मालूम होती, वो बोली। आप लगता है मुझे बरगला कर खराब करना चाहते हैं। डॉक्टर ने गिड़गिड़ाते हुए उससे कुछ और मोहलत मांगी और इस बार एक ऐसी तरकीब सोची जो उनकी निगाह में किसी भी सूरत में फेल हो ही नहीं सकती। उसने फैसला किया कि अपनी बीवी का कत्ल करने की वो उसकी आखिरी कोशिश होगी। अगर वो कोशिश भी नाकाम रही तो किरण का ख्याल अपने मन से निकाल देगा, जो कि असंभव था, या खुद जान दे देगा। एक रोज उसने एक पब्लिक टेलीफोन से अपनी क्लिनिक के नंबर पर टेलीफोन किया। दूसरी ओर से किरण की आवाज आने पर वो आवाज बदलकर बड़े क्रूर स्वर में बोला, डॉक्टर वर्मा को बुलाओ।
डॉक्टर वर्मा इस वक्त क्लिनिक में नहीं है, किरण की आवाज आई। कोई मैसेज है तो बता दीजिए।
हाँ सुन लो मैसेज, उस हरामजादे को बता देना कि उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं।
जब वो क्लिनिक पहुंचा तो भयभीत किरण ने उसे वो मैसेज दे दिया। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस का एक अधिकारी उससे पूछताछ करने क्लिनिक में आया, लेकिन वो कोरा ही वापस चला गया। डॉक्टर को नहीं मालूम था कि फोन करने वाला व्यक्ति कौन था और उसने ऐसा क्यों कहा था। 2-3 दिन बाद एक रात को उसने घर पर शांता को फोन किया और आवाज बदलकर वही संदेश उसे भी सुना दिया। शांता भी डर गई। पुलिस को फिर रिपोर्ट की गई, लेकिन इस बार भी नतीजा सिफर निकला। तफ्तीश आगे न बढ़ी, कोई सूत्र ही उपलब्ध नहीं था। फिर डॉक्टर ने अखबार में से शब्द काट काट कर अपने आप को भेजने के लिए एक धमकी भरा पत्र तैयार किया। वो पत्र उसने डाक से अपने आप को भेज दिया और प्राप्त होने पर उसे पुलिस को सौंप दिया। अब कत्ल की काफी बुनियाद तैयार हो चुकी थी। फिर वो एक दिन किसी काम से मेरठ गया। वहां से उसने चोरी छुपे एक खतरनाक बम खरीदा। वापस आकर वो बम उसने अपनी अलमारी में छुपा कर रख दिया। एक रात शांता ने उससे कहा कि वो कल सुबह बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद अपनी बहन के यहाँ जाना चाह रही थी। डॉक्टर ने उसे कह दिया कि गाड़ी ले जाए, कल तो वो खुद टैक्सी से चला जाएगा। रात के 2 बजे वो चुपचाप उठा। उसने गैराज में जाकर कार का हुड उठाया और बम को इस प्रकार फिक्स किया कि इग्निशन के ऑन होते ही बम फट जाता। अब शांता का खात्मा निश्चित था। बाद में तफ्तीश होने पर यही समझा जाता कि हत्यारा मारना तो डॉक्टर को चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश शिकार हो गई बेचारी उसकी बीवी शांता। अगले दिन बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद डॉक्टर अभी घर पर ही था कि शांता बहन के घर जाने के लिए तैयार हो गई। वो गैराज से कार निकालने चली गई। डॉक्टर कलेजा थामे खिड़की के पास पहुंचा। उसने शांता को गैराज का दरवाजा खोलते और फिर कार में बैठते हुए देखा। शांता ने इग्निशन में चाबी लगाई। डॉक्टर ने आंखें बंद कर दी। अभी एक जोर का धमाका होगा और शांता समेत कार के परखच्चे उड़ जाएंगे। वह आंख बंद कर इंतजार करने लगा, लेकिन धमाके के स्थान पर इसके कानों में इंजन के चालू होने की आवाज पड़ी। सत्यानाश! उसने आंखें खोली और गैराज की ओर देखा। शांता कार को गियर में डाल रही थी। बम फटा ही नहीं था। पता नहीं बम खराब था या बेचने वाले ने उसे जानबूझकर ठगा था, या उसे बम को ठीक से इग्निशन से जोड़ना नहीं आया था। उस क्षण डॉक्टर हार के एहसास से पागल सा हो गया। शांता! उसने आवाज लगाई। शांता ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। डॉक्टर ने उसे रुकने का संकेत किया। शांता ने इंजन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। डॉक्टर घर से बाहर निकला और गैराज की ओर लपका। क्या बात है? वो समीप पहुंचा तो शांता ने पूछा। बताता हूँ, डॉक्टर बोला। वह कार का दरवाजा खोलकर उसकी बगल में बैठ गया। फिर एकाएक एक शेर की तरह शांता पर झपटा। उसने अपने दोनों हाथों से शांता की गर्दन दबोच ली। शांता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुटकर रह गई। वो सिर पटकने लगी और हाथ पांव झटकने लगी। उसका चश्मा उसकी नाक से चिटक कर डैशबोर्ड से टकरा कर नीचे जा गिरा। डॉक्टर के अधेड़ शरीर में पता नहीं कहां से इतना बल आ गया था कि उसने एक शैतानी शिकंजे की तरह शांता की गर्दन जब तक जकड़े रखी जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। शांता के मर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसने क्या कर डाला था, लेकिन वो घबराया नहीं। अभी भी यह जाहिर किया जा सकता था कि जो आदमी डॉक्टर को धमकियां दे रहा था, डॉक्टर तक पहुंच न होती पाकर उसने डॉक्टर की पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसने अपनी उखड़ी सांसों को व्यवस्थित किया, शांता का चश्मा उठाया और उसे अपने बैग में डाल दिया। फिर वो कार से बाहर निकला, उसने गैराज का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। उसने कार का हुड उठाया, भीतर से बम और उससे संबंध तारे निकालकर उन्हें गैराज में एक स्थान पर छुपा दिया। फिर उसने शांता का बैग अपने कंधे पर लटकाया और उसके भारी भरकम शरीर को किसी प्रकार अपने कंधे पर लादा। राम राम करता वो बेडरूम में पहुंचा। उसने लाश को पलंग पर डाल दिया और पलंग की चादर वगैरह को इस प्रकार अव्यवस्थित किया जैसे कि हत्यारे की और शांता की हाथापाई हुई हो। फिर उसने शांता की साड़ी उतारकर उसे वो गाउन पहना दिया था जो वो हमेशा पहना करती थी। बैग उसने वार्डरोब की उस खूंटी पर टांग दिया जहां वो हमेशा टांगा करती थी। फिर उसे शांता के पैरों में पड़ी सैंडलों का ख्याल आया। हे भगवान, भारी गलती होते होते बची थी। उसने सैंडलें उतारी और उन्हें पिछले बरामदे में पड़े जूतों के रैक में रख दिया। वहां से उसने शांता के घर पर पहनने वाली चप्पलें उठाई और उन्हें लाकर पलंग के समीप रख दिया। जो स्टेज उसने सेट की थी वह उससे काफी संतुष्ट था। लगता था कि हत्यारा पलंग पर सोई पड़ी शांता पर झपट पड़ा था, अपना बदला उसके पति के स्थान पर पत्नी से चुकाया था। उसके बाद डॉक्टर ने बड़े इत्मीनान से गैराज से गाड़ी निकाली और अपने क्लिनिक पहुंच गया। दोपहर बाद पुलिस ने उसे क्लिनिक में फोन करके सूचना दी कि किसी ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस केस का कार्यभार इंस्पेक्टर अमीठिया के पास था। वो मेरे से परिचित था। घटनास्थल पर अमीठिया मुझे भी साथ ले गया। उसने मुझसे ले लिया था कि मैं चुप रहूंगा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन वहां पहुंचकर मैं चुप नहीं रह सका। मैं काफी देर तक चुप रहा, लाश देखकर चुप रहा, शोकाग्रस्त पति को देखकर चुप रहा, रोते हुए बच्चों को देखकर चुप रहा, अमीठिया और पुलिस फोटोग्राफर को काम करते हुए देखकर चुप रहा, लेकिन अंत में बोल ही पड़ा। जरा सुनो, मैंने अपने दोस्त के कान में बोला। अमीठिया ने प्रश्न सूचक नेत्रों से मेरी ओर देखा। मैं उसे बांह पकड़कर एक और ले गया और धीरे से बोला, मृतक की नाक और कनपट्टियों को देखा तुमने? देखा है, क्या खास बात है उसमें? अमीठिया बोला। नाक और कनपट्टियों पर चश्मे के फ्रेम का दबाव महसूस हो रहा है। ठीक है, देखा मैंने, लेकिन चश्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अमीठिया ने गर्दन हिलाई। चश्मा वार्डरोब में लटके बैग में से बरामद हुआ। हम दोनों ने बड़े गौर से चश्मे का मुआयना किया। बहुत मोटे लेंसों वाला चश्मा है ये, मैं बोला। तो क्या हुआ? अमीठिया बोला। ऐसा मोटा चश्मा लगाने वाली का तो इनके बिना गुजारा नहीं होता होगा। इसके बिना तो वो एक कदम चलने से भी ठोकर खाकर गिर जाती होगी। तो जिस शख्स की आंखें इतनी कमजोर हो, उसका चश्मा तो उसके पलंग के अगल बगल में कहीं मौजूद होना चाहिए, ताकि नींद से उठते ही वो हाथ बढ़ाकर चश्मा उठाए और आंखों पर लगा ले। पर चश्मा बरामद हुआ है पलंग से दूर वार्डरोब में लटके बैग में से। क्या ये बात तुम्हें जचती है कि मरने वाली ने खुद चश्मा बैग में रखा हो और बैग को ले जाकर वार्डरोब में टांग आई? अमीठिया की गर्दन खुद ही इंकार में हिलने लगी। यूं तो वो पलंग पर वापस लौटते समय अंधों की तरह रास्ता टटोलती और ठोकरें खाती आती, वो बोला। एग्जैक्टली, यानी कि चश्मा बैग में किसी और ने रखा है, बैग को वार्डरोब में किसी और ने पहुंचाया है। बिल्कुल, किसने? जाहिर है हत्यारे ने। तुम्हारा मतलब है कि चश्मा शांता और हत्यारे के बीच हुई हाथापाई के दौरान शांता की नाक से गिर गया, फिर बाद में हत्यारे ने चश्मा उठाकर बैग में रखा और बैग को वार्डरोब में टांग दिया। काहे को, हत्यारे को ऐसी जहमत उठाने की जरूरत क्या पड़ी थी? वो चश्मा लाश के पास ही गिरा होता छोड़ जाता, उसे क्या फर्क पड़ता? लेकिन चश्मा उठाया तो गया था, यकीनन उठाया गया था, और वहां से उठाया गया था जहां की वास्तव में हत्या हुई थी। जब लाश को यहाँ बेडरूम में शिफ्ट किया गया था, ये जाहिर करने की कोशिश की गई थी कि हत्या यहाँ हुई है। तो वो चश्मा कहीं और पड़ा पाया जाना मुनासिब न लगता। यानी कि हत्यारे को असली मौका वारदात से चश्मा उठाना तो सूझा, लेकिन ये न सूझा कि इतनी कमजोर निगाह वाली शांता का चश्मा उससे दूर वार्डरोब में नहीं उसके सिरहाने होना चाहिए था। इससे क्या साबित होता है? इससे तो ये साबित होता है कि हत्या कहीं और की गई थी। ये भी साबित होता है कि हत्यारा भी वो नहीं है जो समझा जा रहा है। कथित हत्यारे ने हत्या कहीं और की होती तो उसे चश्मे में कोई दिलचस्पी न होती, वो तो उसका काम करता और चलता बनता। चश्मे को यूं संभाल कर रखना जाहिर करता है कि हत्यारा घर का ही कोई आदमी है। उस आदमी ने हत्या यहां की होती तो चश्मा यहीं कहीं गिरता, जिससे कि उसे एक स्वाभाविक क्रिया के तौर पर उठाकर पलंग के आसपास कहीं रख दिया होता। लेकिन चश्मा क्योंकि कहीं और से असली घटनास्थल से उठाकर बैग में रखा गया था, और बैग का रखने का उचित स्थान क्योंकि वार्डरोब था, इसलिए चश्मा भी बैग के साथ वार्डरोब में पहुंच गया। बैग का उचित स्थान वार्डरोब है। अब यह तो घर का ही आदमी मालूम हो सकता है। घर का आदमी तो एक ही है, अमिठिया बोला, और उसकी नजर डॉक्टर की ओर घूम गई। एक बात और भी है, मैं धीरे से बोला, जो सिद्ध करती है कि हत्या यहां बेडरूम में नहीं हुई है। तो क्या? अमिठिया ने डॉक्टर पर से निगाह हटाकर मेरी तरफ देखा। मैंने फर्श पर पलंग के पास रखे जनाना चप्पलों के जोड़े की तरफ संकेत किया। मामूली चप्पलें हैं जो औरत घर में पहनती है, अमिठिया बोला। चप्पलों में कुछ नहीं है, इनके फर्श पर पड़ी होने के तरीके पर गौर करो। क्या गौर करूं? इनके पंजों का रुख पलंग की तरफ है। तो क्या हुआ? जब कोई सोने के लिए पलंग पर पहुंचता है तो चप्पलें उतार कर बिस्तर के हवाले होता है, तो चप्पलों के पंखों का रुख पलंग से परे की तरफ होता है। लेकिन अगर कोई और आदमी पलंग पर मौजूद शख्स की चप्पलें उठाकर पलंग के पास रखने जाता है तो एक स्वाभाविक क्रिया के तौर पर वो चप्पलें पलंग के पास इस प्रकार रखता है कि उनके पंजों का रुख पलंग की तरफ होता है। चप्पलें हाथ में ही उठती इस प्रकार है, चाहो तो उठाकर देख लो। अमिठिया ने ऐसी कोई कोशिश न की, लेकिन उसके चेहरे पर सहमति के भाव जरूर अंकित थे। ये बात स्पष्ट जाहिर होती है कि शांता खुद चप्पलें उतारकर पलंग पर नहीं लेती थी, बल्कि चप्पलें बाद में वहां पहुंचाई गई थीं। इंस्पेक्टर साहब, जैसे चप्पलें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाद में पहुंचाई गई हों, वैसे ही शांता को भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कत्ल के बाद में यहां पहुंचाया गया था। लेकिन हत्यारे को हत्या कहीं और करके लाश यहां डालने की क्या जरूरत थी? उस हत्यारे को जरूरत नहीं थी कि जिसे कि हत्यारा समझा जाने की कोशिश की गई दिखाई दे रही है, लेकिन उसे थी, जो कि वास्तव में हत्यारा था। वक्ती जुनून के हवाले होकर जरूर हत्यारा ऐसी जगह हत्या कर बैठा था जहां से लाश बरामद होने पर वो ये दावा न कर पाता कि हत्या किसी और ने की है। अमिठिया फिर डॉक्टर की तरफ देखने लगा। राजधानी में अभी हाल ही में ऐसा एक केस होकर हटा है, उसमें भी एक डॉक्टर एक गैर औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार था और इस वजह से अपनी अधेड़ बीवी से बेजार रहता था। लगता है यहाँ इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। यहाँ कोई गैर औरत तो दिखाई नहीं दे रही। अभी तुमने देखने की कोशिश कहाँ की है? जब कोशिश करोगे तो दिखाई दे जाएगी। कोशिश की गई और किरण के बारे में पता चली गया। पुलिस ने तत्काल किरण को मटेरियल विटनेस के तौर पर हिरासत में ले लिया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने घबराकर बता दिया कि डॉक्टर वर्मा उससे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन उसने डॉक्टर को कह दिया था कि उसे हासिल करने का एक ही तरीका है, वो है शादी। शादी वह कर नहीं सकता था क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था और तलाक संभव नहीं दिखाई दे रहा था। किरण से ही पुलिस को यह मालूम हुआ कि डॉक्टर किरण से और मोहलत भी मांगता जाता था और तलाक के लिए अर्जी भी नहीं देता था। इसका मतलब साफ था कि डॉक्टर पत्नी की हत्या करके उससे पीछा छुड़ाने का इरादा किए हुए था। नतीजतन डॉक्टर वर्मा को अपनी पत्नी की हत्या के संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। यूं तो डॉक्टर के खिलाफ पूरी रूप से कुछ सिद्ध कर पाना आसान नहीं था। उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। मकतुला के चश्मे और चप्पलों वाली बात केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का दर्जा रखती थी। डॉक्टर को सजा दिलाने के लिए लंबी गहरी तफ्तीश और ढेरों सरगर्मी की जरूरत थी, लेकिन पुलिस की मुश्किल खुद डॉक्टर ने आसान कर दी। उसने खुद अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने न केवल अपना अपराध स्वीकार किया बल्कि अपनी बीवी की हत्या के पहले 5 असफल प्रयत्न के बारे में भी पुलिस को बता दिया। डॉक्टर वर्मा आज भी तिहाड़ जेल में है, जहां की उसका सेल ही उसका क्लिनिक बना हुआ है, जहां वह कानून के दुश्मनों और कानून के रखवालों का समान रूप से इलाज करते हैं। उनकी विनम्रता व सेवा भाव को देखकर कोई भी अविश्वास करने को तैयार नहीं होता कि वो शख्स अपनी ही पत्नी के कत्ल का अपराधी था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी बीवी का चश्मा? उम्मीद है आपको इस कहानी का दूसरा भाग भी पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इन कहानियों पर अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स जरूर दें। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सब मेरी कहानी सुन रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं। मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी एक बार फिर आप सभी से चलते चलते मेरी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।
चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते।
आवाज की दुनिया के दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केड़ो हाल आहे। मैं संगीता पमनानी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने मेरी कहानी बीवी का चश्मा का दूसरा भाग लेकर। तो आप सभी को याद होगा कि डॉक्टर साहब ने कितनी ही तरकीबें आजमाई अपनी बीवी को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन कोई भी तरकीब जो है वो काम नहीं आई। तो उनके परेशान दिमाग में एक नई तरकीब पनपी है, जो है बिजली, बिजली का झटका। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर साहब अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं कि नहीं। चलें। एक रोज उसने शांता को सलाह दी कि अगर वो सोने से पहले गर्म पानी से नहाया करे तो इससे उसके शरीर की वो टूटन और दर्द सब दूर हो जाएंगे, जिसकी वो अक्सर शिकायत किया करती थी। एक तो वो उसका पति था, ऊपर से प्रसिद्ध डॉक्टर भी था, भला वो उसकी बात क्यों न मानती, विशेष रूप से तब जबकि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पति भक्त उस औरत को क्या मालूम था कि उसका पति परमेश्वर उसकी हत्या के 4 प्रयत्न पहले कर चुका था। उस रात सोने से पहले उसने अपनी पत्नी के लिए बाथरूम में गर्म पानी भरा और बाथरूम के पृष्ठ भाग में दीवार के साथ बने एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर एक बिजली का हीटर भी रख दिया, ताकि बाथरूम का वातावरण गर्म हो जाता और शांता को ठंड न महसूस होती। योजना ये थी कि शांता जिस वक्त पानी में नहा रही होगी, उस वक्त डॉक्टर बाहर की दीवार पर तस्वीर टांगने के लिए एक कील ठोकने लगेगा। दीवार पर जोर जोर से पड़ती हथौड़ी से दीवार में पैदा होने वाली धमक से उसकी दीवार के दूसरी ओर बाथरूम में छोटे से प्लेटफॉर्म पर रखा हीटर वहां से सरककर पानी में जा गिरेगा और शांता बिजली का झटका खाकर मर जाएगी। दरवाजा भीतर से बंद होगा, कोई सपने में भी नहीं सोच सकेगा कि शांता की हत्या हो गई थी। शांता के दरवाजा बंद कर लेने के बाद डॉक्टर कान लगाए सुनने लगा। जब उसे अपनी पत्नी के भारी भरकम शरीर के पानी में दाखिल होने की आवाज सुनाई दी तो वो कील पर हथौड़ी से प्रहार करने लगा। 15-20 प्रहार कर चुकने के बाद वो ठिठका और कान लगाकर सुनने लगा। शांता, उसने आवाज लगाई, पानी ज्यादा गर्म तो नहीं? जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भीतर से शांता की मीठी आवाज आई, ठीक है जी। अब क्या गड़बड़ हो गई, वो अपने आप को कोसता हुआ सोचने लगा। फिर सन्नाटा सा छा गया। डॉक्टर की उम्मीद बंधी, हो गया काम। शांता, उसने आवाज लगाई।
हाँ जी।
हे भगवान, ये मुसीबत खत्म भी होगी? डॉक्टर अपने बाल नोचने लगा। अब आवाज बाथरूम के दूसरे कोने से आती मालूम हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब शांता बाहर निकली तो डॉक्टर सचमुच तस्वीरें टांग रहा था। हीटर कैसा रहा, डॉक्टर ने पूछा। बढ़िया, वो बोली, लेकिन प्लेटफॉर्म पर रखा होने की वजह से मुझे बहुत गर्मी लगने लगी थी, इसलिए मैंने उसे उठाकर फर्श पर रख दिया था। लानत लानत, डॉक्टर कुड़ कर रह गया। अगले दिन उसे नया झटका लगा। किरण ने अपना इस्तीफा उसके सामने आकर रख दिया। मुझे आपकी अपनी बीवी से तलाक लेने की नीयत नहीं मालूम होती, वो बोली। आप लगता है मुझे बरगला कर खराब करना चाहते हैं। डॉक्टर ने गिड़गिड़ाते हुए उससे कुछ और मोहलत मांगी और इस बार एक ऐसी तरकीब सोची जो उनकी निगाह में किसी भी सूरत में फेल हो ही नहीं सकती। उसने फैसला किया कि अपनी बीवी का कत्ल करने की वो उसकी आखिरी कोशिश होगी। अगर वो कोशिश भी नाकाम रही तो किरण का ख्याल अपने मन से निकाल देगा, जो कि असंभव था, या खुद जान दे देगा। एक रोज उसने एक पब्लिक टेलीफोन से अपनी क्लिनिक के नंबर पर टेलीफोन किया। दूसरी ओर से किरण की आवाज आने पर वो आवाज बदलकर बड़े क्रूर स्वर में बोला, डॉक्टर वर्मा को बुलाओ।
डॉक्टर वर्मा इस वक्त क्लिनिक में नहीं है, किरण की आवाज आई। कोई मैसेज है तो बता दीजिए।
हाँ, सुन लो मैसेज। उस हरामजादे को बता देना कि उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं।
जब वो क्लिनिक पहुंचा तो भयभीत किरण ने उसे वो मैसेज दे दिया। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस का एक अधिकारी उससे पूछताछ करने क्लिनिक में आया, लेकिन वो कोरा ही वापस चला गया। डॉक्टर को नहीं मालूम था कि फोन करने वाला व्यक्ति कौन था और उसने ऐसा क्यों कहा था। 2-3 दिन बाद एक रात को उसने घर पर शांता को फोन किया और आवाज बदलकर वही संदेश उसे भी सुना दिया। शांता भी डर गई। पुलिस को फिर रिपोर्ट की गई, लेकिन इस बार भी नतीजा 0 निकला। तफ्तीश आगे ना बढ़ी, कोई सूत्र ही उपलब्ध नहीं था। फिर डॉक्टर ने अखबार में से शब्द काट काट कर अपने आप को भेजने के लिए एक धमकी भरा पत्र तैयार किया। वो पत्र उसने डाक से अपने आप को भेज दिया और प्राप्त होने पर उसे पुलिस को सौंप दिया। अब कत्ल की काफी बुनियाद तैयार हो चुकी थी। फिर वो एक दिन किसी काम से मेरठ गया। वहां से उसने चोरी छुपे एक खतरनाक बम खरीदा। वापस आकर वो बम उसने अपनी अलमारी में छुपा कर रख दिया। एक रात शांता ने उससे कहा कि वो कल सुबह बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद अपनी बहन के यहाँ जाना चाह रही थी। डॉक्टर ने उसे कह दिया कि गाड़ी ले जाए, कल तो वो खुद टैक्सी से चला जाएगा। रात के 2 बजे वो चुपचाप उठा। उसने गैराज में जाकर कार का हुड उठाया और बम को इस प्रकार फिक्स किया कि इग्निशन के ऑन होते ही बम फट जाता। अब शांता का खात्मा निश्चित था। बाद में तफ्तीश होने पर यही समझा जाता कि हत्यारा मारना तो डॉक्टर को चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश शिकार हो गई बेचारी उसकी बीवी शांता। अगले दिन बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद डॉक्टर अभी घर पर ही था कि शांता बहन के घर जाने के लिए तैयार हो गई। वो गैराज से कार निकालने चली गई। डॉक्टर कलेजा थामे खिड़की के पास पहुंचा। उसने शांता को गैराज का दरवाजा खोलते और फिर कार में बैठते हुए देखा। शांता ने इग्निशन में चाबी लगाई। डॉक्टर ने आंखें बंद कर दी। अभी एक जोर का धमाका होगा और शांता समेत कार के परखच्चे उड़ जाएंगे। वह आंख बंद कर इंतजार करने लगा, लेकिन धमाके के स्थान पर इसके कानों में इंजन के चालू होने की आवाज पड़ी। सत्यानाश! उसने आंखें खोली और गैराज की ओर देखा। शांता कार को गियर में डाल रही थी। बम फटा ही नहीं था। पता नहीं बम खराब था या बेचने वाले ने उसे जानबूझकर ठगा था, या उसे बम को ठीक से इग्निशन से जोड़ना नहीं आया था। उस क्षण डॉक्टर हार के एहसास से पागल सा हो गया। शांता, उसने आवाज लगाई। शांता ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। डॉक्टर ने उसे रुकने का संकेत किया। शांता ने इंजन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। डॉक्टर घर से बाहर निकला और गैराज की ओर लपका। क्या बात है? वो समीप पहुंचा तो शांता ने पूछा।
बताता हूँ, डॉक्टर बोला।
वह कार का दरवाजा खोलकर उसकी बगल में बैठ गया। फिर एकाएक एक शेर की तरह शांता पर झपटा। उसने अपने दोनों हाथों से शांता की गर्दन दबोच ली। शांता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुटकर रह गई। वो सिर पटकने लगी और हाथ पांव झटकने लगी। उसका चश्मा उसकी नाक से चिटक कर डैशबोर्ड से टकरा कर नीचे जा गिरा। डॉक्टर के अधेड़ शरीर में पता नहीं कहां से इतना बल आ गया था कि उसने एक शैतानी शिकंजे की तरह शांता की गर्दन जब तक जकड़े रखी जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। शांता के मर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसने क्या कर डाला था, लेकिन वो घबराया नहीं। अभी भी यह जाहिर किया जा सकता था कि जो आदमी डॉक्टर को धमकियां दे रहा था, डॉक्टर तक पहुंच न होती पाकर उसने डॉक्टर की पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसने अपनी उखड़ी सांसों को व्यवस्थित किया, शांता का चश्मा उठाया और उसे अपने बैग में डाल दिया। फिर वो कार से बाहर निकला। उसने गैराज का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। उसने कार का हुड उठाया, भीतर से बम और उससे संबंध तारे निकालकर उन्हें गैराज में एक स्थान पर छुपा दिया। फिर उसने शांता का बैग अपने कंधे पर लटकाया और उसके भारी भरकम शरीर को किसी प्रकार अपने कंधे पर लादा। राम राम करता वो बेडरूम में पहुंचा। उसने लाश को पलंग पर डाल दिया और पलंग की चादर वगैरह को इस प्रकार अव्यवस्थित किया जैसे कि हत्यारे की और शांता की हाथापाई हुई हो। फिर उसने शांता की साड़ी उतारकर उसे वो गाउन पहना दिया था जो वो हमेशा पहना करती थी। बैग उसने वार्डरोब के उस खूंटी पर टांग दिया जहां वो हमेशा टांगा करती थी। फिर उसे शांता के पैरों में पड़ी सैंडलों का ख्याल आया। हे भगवान, भारी गलती होते होते बची थी। उसने सैंडलें उतारी और उन्हें पिछले बरामदे में पड़े जूतों के रैक में रख दिया। वहां से उसने शांता के घर पर पहनने वाली चप्पलें उठाई और उन्हें लाकर पलंग के समीप रख दिया। जो स्टेज उसने सेट की थी वह उससे काफी संतुष्ट था। लगता था कि हत्यारा पलंग पर सोई पड़ी शांता पर झपट पड़ा था, अपना बदला उसके पति के स्थान पर पत्नी से चुकाया था। उसके बाद डॉक्टर ने बड़े इत्मीनान से गैराज से गाड़ी निकाली और अपने क्लिनिक पहुंच गया। दोपहर बाद पुलिस ने उसे क्लिनिक में फोन करके सूचना दी कि किसी ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस केस का कार्यभार इंस्पेक्टर अमीठिया के पास था। वो मेरे से परिचित था। घटनास्थल पर अमीठिया मुझे भी साथ ले गया। उसने मुझसे ले लिया था कि मैं चुप रहूंगा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन वहां पहुंचकर मैं चुप नहीं रह सका। मैं काफी देर तक चुप रहा, लाश देखकर चुप रहा, शोकाग्रस्त पति को देखकर चुप रहा, रोते हुए बच्चों को देखकर चुप रहा, अमीठिया और पुलिस फोटोग्राफर को काम करते हुए देखकर चुप रहा, लेकिन अंत में बोल ही पड़ा। जरा सुनो, मैंने अपने दोस्त के कान में बोला। अमीठिया ने प्रश्न सूचक नेत्रों से मेरी ओर देखा। मैं उसे बांह पकड़कर एक और ले गया और धीरे से बोला, मृतक की नाक और कनपट्टियों को देखा तुमने? देखा है, क्या खास बात है उसमें? अमीठिया बोला। नाक और कनपट्टियों पर चश्मे के फ्रेम का दबाव महसूस हो रहा है। ठीक है, देखा मैंने, लेकिन चश्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अमीठिया ने गर्दन हिलाई। चश्मा वार्डरोब में लटके बैग में से बरामद हुआ। हम दोनों ने बड़े गौर से चश्मे का मुआयना किया। बहुत मोटे लेंसों वाला चश्मा है ये, मैं बोला। तो क्या हुआ? अमीठिया बोला। ऐसा मोटा चश्मा लगाने वाली का तो इनके बिना गुजारा नहीं होता होगा। इसके बिना तो वो एक कदम चलने से भी ठोकर खाकर गिर जाती होगी। तो जिस शख्स की आंखें इतनी कमजोर हो उसका चश्मा तो उसके पलंग के अगल बगल में कहीं मौजूद होना चाहिए ताकि नींद से उठते ही वो हाथ बढ़ाकर चश्मा उठाए और आंखों पर लगा ले। पर चश्मा बरामद हुआ है पलंग से दूर वार्डरोब में लटके बैग में से। क्या ये बात तुम्हें जचती है कि मरने वाली ने खुद चश्मा बैग में रखा हो और बैग को ले जाकर वार्डरोब में टांग आई? अमीठिया की गर्दन खुद ही इंकार में हिलने लगी। यूं तो वो पलंग पर वापस लौटते समय अंधों की तरह रास्ता टटोलती और ठोकरें खाती आती, वो बोला। एग्जैक्टली, यानी कि चश्मा बैग में किसी और ने रखा है, बैग को वार्डरोब में किसी और ने पहुंचाया है। बिल्कुल,
किसने?
जाहिर है हत्यारे ने।
तुम्हारा मतलब है कि चश्मा शांता और हत्यारे के बीच हुई हाथापाई के दौरान शांता की नाक से गिर गया, फिर बाद में हत्यारे ने चश्मा उठाकर बैग में रखा और बैग को वार्डरूम में टांग दिया।
काहे को, हत्यारे को ऐसी जहमत उठाने की जरूरत क्या पड़ी थी? वो चश्मा लाश के पास ही गिरा होता छोड़ जाता, उसे क्या फर्क पड़ता?
लेकिन चश्मा उठाया तो गया था।
यकीनन उठाया गया था, और वहां से उठाया गया था जहां की वास्तव में हत्या हुई थी। जब लाश को यहाँ बेडरूम में शिफ्ट किया गया था, ये जाहिर करने की कोशिश की गई थी कि हत्या यहाँ हुई है, तो वो चश्मा कहीं और पड़ा पाया जाना मुनासिब न लगता। यानी कि हत्यारे को असली मौका वारदात से चश्मा उठाना तो सूझा, लेकिन ये न सूझा कि इतनी कमजोर निगाह वाली शांता का चश्मा उससे दूर वार्डरोब में नहीं, उसके सिरहाने होना चाहिए था। इससे क्या साबित होता है? इससे तो ये साबित होता है कि हत्या कहीं और की गई थी। ये भी साबित होता है कि हत्यारा भी वो नहीं है जो समझा जा रहा है। कथित हत्यारे ने हत्या कहीं और की होती तो उसे चश्मे में कोई दिलचस्पी न होती, वो तो उसका काम करता और चलता बनता। चश्मे को यूं संभाल कर रखना जाहिर करता है कि हत्यारा घर का ही कोई आदमी है। उस आदमी ने हत्या यहां की होती तो चश्मा यहीं कहीं गिरता, जिससे कि उसे एक स्वाभाविक क्रिया के तौर पर उठाकर पलंग के आसपास कहीं रख दिया होता। लेकिन चश्मा क्योंकि कहीं और से असली घटनास्थल से उठाकर बैग में रखा गया था, और बैग का रखने का उचित स्थान क्योंकि वार्डरोब था, इसलिए चश्मा भी बैग के साथ वार्डरोब में पहुंच गया। बैग का उचित स्थान वार्डरोब है। अब यह तो घर का ही आदमी मालूम हो सकता है। घर का आदमी तो एक ही है, अमिठिया बोला, और उसकी नजर डॉक्टर की ओर घूम गई।
एक बात और भी है, मैं धीरे से बोला, जो सिद्ध करती है कि हत्या यहां बेडरूम में नहीं हुई है।
तो क्या? अमिठिया ने डॉक्टर पर से निगाह हटाकर मेरी तरफ देखा।
मैंने फर्श पर पलंग के पास रखे जनाना चप्पलों के जोड़े की तरफ संकेत किया।
मामूली चप्पलें हैं जो औरत घर में पहनती है, अमिठिया बोला।
चप्पलों में कुछ नहीं है, इनके फर्श पर पड़ी होने के तरीके पर गौर करो।
क्या गौर करूं?
इनके पंजों का रुख पलंग की तरफ है।
तो क्या हुआ?
जब कोई सोने के लिए पलंग पर पहुंचता है तो चप्पलें उतारकर बिस्तर के हवाले होता है, तो चप्पलों के पंखों का रुख पलंग से परे की तरफ होता है। लेकिन अगर कोई और आदमी पलंग पर मौजूद शख्स की चप्पलें उठाकर पलंग के पास रखने जाता है, तो एक स्वाभाविक क्रिया के तौर पर वो चप्पलें पलंग के पास इस प्रकार रखता है कि उनके पंजों का रुख पलंग की तरफ होता है। चप्पलें हाथ में ही उठती इस प्रकार है, चाहो तो उठाकर देख लो।
अमिठिया ने ऐसी कोई कोशिश न की, लेकिन उसके चेहरे पर सहमति के भाव जरूर अंकित थे।
ये बात स्पष्ट जाहिर होती है कि शांता खुद चप्पलें उतारकर पलंग पर नहीं लेती थी, बल्कि चप्पलें बाद में वहां पहुंचाई गई थी। इंस्पेक्टर साहब, जैसे चप्पलें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाद में पहुंचाई गई हों, वैसे ही शांता को भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कत्ल के बाद में यहां पहुंचाया गया था।
लेकिन हत्यारे को हत्या कहीं और करके लाश यहां डालने की क्या जरूरत थी?
उस हत्यारे को जरूरत नहीं थी कि जिसे कि हत्यारा समझा जाने की कोशिश की गई दिखाई दे रही है,
लेकिन उसे थी जो कि वास्तव में हत्यारा था।
वक्ती जुनून के हवाले होकर जरूर हत्यारा ऐसी जगह हत्या कर बैठा था जहां से लाश बरामद होने पर वो ये दावा न कर पाता कि हत्या किसी और ने की है।
अमिठिया फिर डॉक्टर की तरफ देखने लगा।
राजधानी में अभी हाल ही में ऐसा एक केस होकर हटा है, उसमें भी एक डॉक्टर एक गैर औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार था और इस वजह से अपनी अधेड़ बीवी से बेजार रहता था। लगता है यहाँ इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है।
यहाँ कोई गैर औरत तो दिखाई नहीं दे रही।
अभी तुमने देखने की कोशिश कहाँ की है? जब कोशिश करोगे तो दिखाई दे जाएगी।
कोशिश की गई और किरण के बारे में पता चली गया। पुलिस ने तत्काल किरण को मटेरियल विटनेस के तौर पर हिरासत में ले लिया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने घबराकर बता दिया कि डॉक्टर वर्मा उससे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन उसने डॉक्टर को कह दिया था कि उसे हासिल करने का एक ही तरीका है, वो है शादी। शादी वह कर नहीं सकता था क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था और तलाक संभव नहीं दिखाई दे रहा था। किरण से ही पुलिस को यह मालूम हुआ कि डॉक्टर किरण से और मोहलत भी मांगता जाता था और तलाक के लिए अर्जी भी नहीं देता था। इसका मतलब साफ था कि डॉक्टर पत्नी की हत्या करके उससे पीछा छुड़ाने का इरादा किए हुए था। नतीजतन डॉक्टर वर्मा को अपनी पत्नी की हत्या के संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। यूं तो डॉक्टर के खिलाफ पूरी रूप से कुछ सिद्ध कर पाना आसान नहीं था, उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। मक्तुला के चश्मे और चप्पलों वाली बात केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का दर्जा रखती थी। डॉक्टर को सजा दिलाने के लिए लंबी गहरी तफ्तीश और ढेरों सरगर्मी की जरूरत थी, लेकिन पुलिस की मुश्किल खुद डॉक्टर ने आसान कर दी। उसने खुद अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने न केवल अपना अपराध स्वीकार किया बल्कि अपनी बीवी की हत्या के पहले 5 असफल प्रयत्न के बारे में भी पुलिस को बता दिया। डॉक्टर वर्मा आज भी तिहाड़ जेल में है, जहां की उसका सेल ही उसका क्लिनिक बना हुआ है, जहां वह कानून के दुश्मनों और कानून के रखवालों का समान रूप से इलाज करते हैं। उनकी विनम्रता व सेवा भाव को देखकर कोई भी अविश्वास करने को तैयार नहीं होता कि वो शख्स अपनी ही पत्नी के कत्ल का अपराधी था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी बीवी का चश्मा? उम्मीद है आपको इस कहानी का दूसरा भाग भी पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इन कहानियों पर अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स जरूर दें। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सब मेरी कहानी सुन रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं। मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी एक बार फिर आप सभी से चलते चलते मेरी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।
चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते।